427. Yeah, 426 actually. 426. وكفى وسلم على عباد الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جعلة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب فبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وعدوهم فأصبحوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه ربنا تو سورہ صف کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں اور پچھلی جو آیات تھیں ان کی تفسیر ہم نے میرے خیال میں مکمل نہیں پڑھی تھی، پیج نمبر 426 پر تک ہم غالباً پہنچے تھے. اگر کسی کے پاس کچھ اور نوٹڈ ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا مکمل ہو گئی تھیں پیج نمبر 426 پہ اور کیا نہیں ہوئی تھیں. تو 426 سے ہم شروع کر رہے ہیں ویسے ریزیومنگ کہ وہ نہیں مکمل ہوئی تھی. تو اس کا جو پہلا پیراگراف ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشخبری سنائی تھی. وہ کیا خوشخبری تھی؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ میں بے شک اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں الیکم تمہاری طرف مصدقا لما بین یدیا جو تصدیق کرتا ہے جو تمہارے سامنے ہے من التورات یعنی جو تورات میں سے تمہارے پاس موجود ہے. تو تورات ان لوگوں کے پاس پہلے سے موجود تھی. بین یدیا یعنی تمہارے ہاتھوں میں ہے. ومبشرم برسولی یأتی من بعد اسمہ احمد اور میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اسمہ احمد اس کا نام احمد ہوگا. فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین پس جب آیا وہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. کھلا ہوا جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی جب کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آئی نا انہوں نے بڑی کوششیں کریں مشرکین مکہ نے بھی اور یہود و نصارہ نے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط غلط القابات سے نوازیں. کسی نے کہا کہ یہ تو شاعر ہیں، کسی نے کہا کہ یہ تو کاہن ہیں، کسی نے کہا کہ یہ مجنون ہیں، لیکن پھر خود ہی اپنی باتوں کی انہوں نے نفی کری کہ نہ تو یہ کاہنوں جیسی زندگی گزارتے ہیں، نہ تو ان کا کلام شعر و شاعری پر پورا ہو. پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے ہیں یہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ جانتے تھے اس بات کو. تو شعر و یعنی شاعر اور مجنون تو خود آپس میں ڈسکس کرتے رہے کہ مجنون جو حرکتیں کرتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حرکتیں نہیں کرتے. کذاب یا کاذب جھوٹا کا الزام لگایا لیکن خود ہی پھر اس کی نفی کری इनको तो हमने कभी भी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। तो यानी इन लोगों को बड़ी फिक्र थी इस बात की कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बात कह रहे हैं ना, कि अवामुन नास में इतनी तो थोड़ी बहुत अकल होती है कि वो बेसिक्स को समझ सके ना। तो आप किसी को काजिब कह रहे हैं, लेकिन अवामुन नास में वो शख्स सादिक मशहूर है, तो अवाम की भी तो दिल में बात खटकेगी ना कि भाई ऐसे सादिक शख्स को काजिब जो कह रहा है, तो यकीनन कहने वाले में कोई गड़बड़ है, कोई मसला है कहने वाले के अंदर ना। तो इस वजह से ना इन सरदारान कुरैश को ये मसले पड़ गए थे कि हम इनके लिए कौन सा टाइटल चूज करें कि जिस तो बिल आखिर डिस्कशंस के बाद इन्होंने क्या फैसला किया कि ना शायर अप्लाई हो सकता है, ना काहिन अप्लाई हो सकता है, हाँ हम इनके ऊपर साहिर अप्लाई कर देते हैं। साहिर सहर करने वाला, ठीक है। क्यों उन्होंने सहर करने वाला अप्लाई किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, क्यों इस टाइटल के ऊपर ये मुत्तफिक हो गए? उसकी वजह ये थी कि इन्होंने कहा कि भाई सहर का जो लफ्ज है ना, ये जू मानी हो सकता है, मल्टीपल इसके अंदर मीनिंग्स पोशीदा हैं। एक मीनिंग तो ये होता है कि जी आप किसी को यानी जादू कर दें उसके ऊपर, और वो जो है ना जादू के असर की वजह से कोई अजीब गरीब किस्म की हरकतें करना शुरू हो जाए, ठीक है ना, या बीमार पड़ जाए। तो जादू का तो एक ये इफेक्ट होता है, और दूसरा जादू का ये भी इफेक्ट होता है कि जिसके ऊपर जादू हो जाता है ना, तो वो अपने जो दोस्त अहबाब होते हैं उन दोस्त अहबाब से, रिश्तेदारों से कट जाता है। बात समझ आई? फिर ऐसा मामला हो जाता है कि वो अपने रिश्तेदारों से और दोस्त अहबाब से दूर हो जाता है। ये वाला मानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अप्लाई होता था। क्यों? इसलिए कि जो मुसलमान होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता था ना, तो फिर अपने काफिर रिश्तेदारों से वो कट जाता था। बात समझ में आ रही है? यह है बड़ी पते की बात, और हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अप्लाई होती है, ठीक है, कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाता था वो अपने काफिर रिश्तेदारों से कट जाता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाता था, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो काफिर रिश्तेदारों को जो है वो ये कहते हैं कि नहीं जी तुम मेरे रिश्तेदार नहीं हो, या ये कि वो बिल्कुल ही छोड़ छाड़ करके आ जाए, बल्कि अताअत और इत्तेबा वो अपने रिश्तेदारों की छोड़ देता था, अपने दोस्तों की छोड़ देता था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और इत्तेबा शुरू कर देता था। ये मतलब है इसका, ठीक है। तो ये चूंकि आप सल्लम के ऊपर ईमान लाने की वजह से हर बंदे के ऊपर, जो भी मोमिन होता, मोमिन बनता था, ईमान वाला बनता था, उसके ऊपर ये इफेक्ट जरूर होता था, तो यही इफेक्ट तो जादू का भी होता है, सही है। तो इस वजह से ना उन्होंने जादू का ये वाला मानी ले करके आप सल्लम को जादूगर कहना शुरू कर दिया, और इसके ऊपर वो मुत्तफिक हो गए कि हाँ ये एक ऐसा टाइटल है कि जिसके ऊपर कोई हम पर एतराज नहीं कर सकता। ये लॉजिक समझ में आ रही है कुछ आपको? किसी को अगर अनक्लियर हो तो प्लीज पूछ लिया करें, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या कहा, हाजा सेहरुम मुबीन, कि ये जो आयात वगैरह लेकर के आए हैं ना, ये तो खुला हुआ जादू है, क्योंकि इन आयात को जो सुन लेता है, जो इनके ऊपर ईमान ले आता है, वो अपने पुराने रिश्तेदारों की और दोस्तों की और अपने क्लासमेट्स की, है ना, हमारे साथ तो ये क्लासमेट्स लगे होते हैं, मोहल्ले के रिश्तेदार लगे होते हैं, और बचपन के दोस्त लगे होते हैं जिनको कि हम छोड़ने का नाम ही नहीं देते। हम दीनदार बन तो जाते हैं, राइट, कुछ गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, यानी कुछ गुनाहों को छोड़ देते हैं, तौबा तौबा तो नहीं करते एक्चुअली हम, लेकिन हम कुछ गुनाहों को छोड़ देते हैं, वक्तन छोड़े बेशक, लेकिन हम दोस्तियों को नहीं छोड़ते, है ना, हम दोस्तियों को नहीं छोड़ते। हम दीनदारों के साथ जो हमारे मशायख होते हैं, हम उनके साथ ऐसे नहीं जुड़ते कि हम पुरानी दोस्तियों को तर्क कर दें, इतना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। इसी वजह से हम दीन में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है, बल्कि थोड़ा बहुत जो आगे बढ़ते हैं ना, तो कुछ अरसे के बाद फिर वापस यू टर्न लेकर के जहां से आए थे वहीं वापस चले जाते हैं, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा कुछ जाहिरी तब्दीलियां आ जाती हैं, दाढ़ी छाड़ी निकल आती है, कुछ लिबास में थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है, लेकिन अंदर से वैसे के वैसे ही रहते हैं, बातनी तब्दीली हमारे अंदर नहीं आती। उसकी वजह ये होती है कि हम अपने पुराने ताल्लुकात को, दोस्तियों को और दिली मोहब्बतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, और उन मोहब्बतों के साथ हम दीन में आगे बढ़ नहीं सकते। ये नामुमकिन बात है, नामुमकिन बात है ये। ठीक है, तो सेहर मुबीन के अंदर हमारे लिए बहुत गहरा सबक है, चाहिए कि हम उसको समझ करके अमल करने की कोशिश तो करें कम से कम। आगे फरमाया, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा, और उन्होंने अच्छा, और इससे ज्यादा बेइंसाफ शख्स और कौन हो सकता है जो कि अल्लाह ताला के ऊपर झूठ बांध दे। वह हुआ युदा इलल इस्लाम, हालांकि वो इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, ठीक है, यानी सलामती की तरफ बुलाते हैं। वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जो है वो जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। ये सारे काफिर कैसे हिदायत पे आ गए और मुसलमान हो गए? ठीक है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक एक कौम जो कि जिद और हठधर्मी के ऊपर उतर आए, और वो नबी के साथ जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो यानी नाइंसाफी वाला मामला शुरू कर दे, हत्ता कि वो हद से आगे बढ़ जाए। तो ऐसे लोगों के लिए जब वो हद से आगे बढ़ जाते हैं ना, तो उनके फिर दिलों के ऊपर अल्लाह ताला मोहर लगा देते हैं। ठीक है, और ये यानी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर होता है कि किसके दिल पे मोहर लगा दी है, किसके दिल पे मोहर नहीं लगाई है। तो जिसके दिल के ऊपर मोहर नहीं लगाई हुई होती है अल्लाह ताला ने, तो वो फिर किसी ना किसी वक्त जो है ना, वो अपने गुनाहों से तौबा करके ईमान ले आता है, यानी उसको हिदायत की तौफीक मिल जाती है। और जिसके ऊपर मोहर लगा दी होती है, तो हम किसी को जज नहीं कर सकते इस तरीके से, बिकॉज हमें नहीं पता कि वो शख्स जो है वो कितना आगे बढ़ा है कि अल्लाह ने उसके दिल पर मोहर लगा दी है। हमारे पास ये गेज करने के आलात हैं ही नहीं, हमारे पास ये गेज करने के, ये मेजर करने के आलात नहीं है कि कौन हद से आगे बढ़ गया है और किसके दिल पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है। ये तो हम नहीं कह सकते ना, अल्लाह ताला तो कह सकते हैं ना, क्योंकि अल्लाह ताला को तो पता है कि कौन क्या कर रहा है और किसके दिल पे मोहर लगनी है, किसके दिल पे मोहर नहीं लगनी है। तो अल्लाह ताला को ये बात सचती है कि वो ये बात कह सकते हैं, हमें ये बात नहीं सचती कि हम किसी के बारे में फैसला कर दें कि दिल पे मोहर लग गई है इसके। ठीक है, युरीदुना लियुतफिउ नूर अल्लाह बिअफवाहिहिम, ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को बुझा दें। पफा यतफाउ, बुझा देना, जैसे आप मोमबत्ती को फूंक मार करके बुझाते हैं ना, उसी के यानी उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो इन लोगों ने इरादा किया कि अल्लाह के नूर को अपने फूंकों से, अपने मुंह की फूंकों से, अफवाह फाह की जमा है, फाह मुंह को कहते हैं, फहून एक्चुअली, राइट, फहून ही कहते हैं, मैं अपने जहन में बिल्कुल एग्जैक्टली अब सही नहीं आ रहा शायद। तो अपने मुंह की फूंकों से इन्होंने इरादा किया कि अल्लाह के नूर को बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, हालांकि अल्लाह ताला अपने नूर को मुकम्मल करने वाला है, तमाम करने वाला है, मुतिम, तमाम करने वाला है। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे के काफिरीन जो हैं वो कितनी इस बात से कराहियत रखते हो, कितनी इस बात को नापसंद करते हो कि इस दीन इस्लाम का नूर मुकम्मल होता हुआ उनको नजर आए, तो बहुत इनके दिलों के अंदर जलन और शदीद किस्म की तकलीफ उठती है। इससे कोई परवाह नहीं अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला डज नॉट केयर, अल्लाह ताला ने जो काम करना है अपने फैसले के मुताबिक वो करके रहना है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक्की, वो वही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत वही है जिसने कि भेजा अपने रसूल को हिदायत के साथ और दीन हक के साथ। लियुज़हिरहू अलद दीन कुल्लिही, ताकि के जाहिर कर दे पूरे के पूरे दीन को, यानी ताकि जाहिर कर दे का मतलब ऊपर कर दे, ठीक है, यानी गालिब कर दे हर हर किस्म के अदियान के ऊपर इस दीन को। हर किस्म के अदियान, ईसाइत तो हम जानते हैं कि एक दीन है, यहूदियत एक दीन है, चलो हिंदुइज्म भी एक दीन है, लेकिन दीन का लफ्ज जो है ना, ये बहुत ही वर्सटाइल किस्म का, बल्कि बहुत ही जामे किस्म का लफ्ज है। इसमें हर किस्म की आइडियोलॉजीज आ जाती हैं। ठीक है, किसी का दीन जो है ना, वो ये सब चीजें हो सकती हैं जिनको कि हम समझते हैं दीन, लेकिन किसी का दीन जो है वो सिर्फ पैसा कमाना, ये उसका दीन है। किसी का दीन जो है वो सिर्फ जो है वो अपने खाने पीने के ख्वाहिशात को पूरा करना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना हम कि कुछ लोग जो हैं वो जीने के लिए खाते हैं, राइट, इतना खाते हैं ताकि वो जी सकें, मर ना जाए भूख से, और कुछ लोग जो हैं वो खाने के लिए जीते हैं। ठीक है, उनको हर वक्त खाने की फिक्र होती है कि कहाँ से अब क्या खाना है, अब कौन सी वाली डिश पकनी चाहिए घर के अंदर, अब हमने जो है वो कौन से रेस्टोरेंट में जाकर के खाना है, अब जो है वो हमने फलाने शहर में गए हैं तो फलाने शहर में पहले से उन्होंने रिसर्च करके रखी हुई होती है कि वहां पर ये जगह है जहां पर के लोगों ने बड़ी तारीफें करी हैं, बड़ा अच्छा किस्म का वहां पे मेन्यू मिलता है, वहां जाकर के हम खाना खाएंगे। तो उनकी ट्रैवलिंग का मकसद भी क्या होता है, खाना खाना। पहले से उन्होंने ये सारी तैयारियां की हुई होती हैं और फिर खाना खाने के बाद जब दोस्तों के साथ बैठते हैं, रिश्तेदारों के साथ बैठते हैं, तो फिर उनकी पूरी की पूरी मजलिस की डिस्कशन क्या होती है, फलाना रेस्टोरेंट में ये मिलता है, वहां पर इतना अच्छा खाना था, वहां पे मैं गया, वहां पे तो खाना कोई इतना मजे का नहीं था, और खामखा उन्होंने इतनी तारीफ करी हुई थी लेकिन इतना अच्छा खाना वहां पे नहीं था। तो ये जो लोग होते हैं ना, इनका दीन जो है वो खाना पीना होता है, यही उनका दीन होता है, क्योंकि जी यानी खाने के लिए जीते हैं। तो दीन तो कुछ भी हो सकता है ना। तो अल्लाह ताला ने इस दीन को जो है वो तमाम अदियान के ऊपर गालिब करना करना था। वलो करहल काफिरों कर वलो करहल मुशरिकून, अगरचे के मुशरिकीन लोग इससे बहुत ही नफरत रखते हैं अपने दिल के अंदर। ठीक है, तो इसको हमने, हाँ पिछली दफा ये कहा था कि हमने मारिफ मसा, ये जो खुलासे तफसीर है इसको मुकम्मल नहीं पढ़ा था, तो इसको मुकम्मल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ना। आप क्या लिख रहे हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जिस आदमी ने बीबी एस ए के ऊपर पत्थर थ्रो करने वाला था लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें हिदायत दे दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर थ्रो करने, अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी, बाकी सारे मुल्क बदर कर दिए गए। हाँ जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, बनू नज़ीर का वाक़या सही। ठीक है, तो वो जो पत्थर फेंकने वाला था, तो वो पत्थर फेंकने की उसकी रीजंस क्या थी, किसी और के बातों में आ गया था, वरगलाने में आ गया था, और उसकी वजह से उतने उसने इतना बड़ा अमल करने का फैसला कर लिया था, लेकिन समझता था कि यही काम मैं सही कर रहा हूँ, उसको सही समझ करके कर रहा था। ठीक है, तो उसको अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी, लेकिन जो जानता है कि भाई मैं गलत काम कर रहा हूँ लेकिन फिर भी जो है वो उसको गलत काम को कर रहा होता है ना, तो ऐसा जो बंदा होता है ना उसको फिर हिदायत मिलना जो है ज़रा मुश्किल हो जाता है। और जितना इसके अंदर ये सिफत बढ़ जाए कि जानबूझ करके गलत काम करे, तो उतना जो है ना हिदायत का दरवाज़ा उसके लिए बंद होता चला जाता है, हिदायत की पॉसिबिलिटी कम होती चली जाती है जब जानबूझ करके हक की मुखालफत करे, ना जानते हुए हक की मुखालफत कर रहा है और बहुत ज्यादा मुखालफत कर रहा है, हत्ता के हक वालों को बहुत तकलीफ भी पहुंचा रहा है लेकिन ना जानते हुए कर रहा है, वो अपने तई सही काम कर रहा है राइट, और हक वालों को वो बुरा समझ करके उनको दबाने की कोशिश कर रहा है ताकि जो है वो यानी ये बातिल जो है वो दब जाए और दुनिया से जो है वो ये फसाद खत्म हो जाए, फितना खत्म हो जाए, वो ये समझ करके हक की मुखालफत कर रहा है। तो उसके लिए हिदायत के रास्ते पे आ जाना जो है वो बहुत ज्यादा मुमकिन होता है, अल्लाह ताला जो है ना वो ऐसे लोगों को हिदायत दे देते हैं बिलाखिर। ठीक है, शुरू में उनसे बहुत सारे काम करवा रहे होते हैं एक्चुअली अल्लाह ताला, ठीक है, मोमिनीन की आजमाइश करवा रहे होते हैं ताकि मोमिनीन का दर्जा बढ़े राइट, इनकी तकालीफ को सह सह करके मोमिनीन का दर्जा और बढ़े। तो ये लोग शुरू में ना अल्लाह ताला ही के प्लान के ऊपर एक्चुअली अमल कर रहे होते हैं ना जानते हुए, ठीक है, लेकिन चूंकि इनके अंदर ये वाली सिफत नहीं होती, हठधर्मी वाली और जिद वाली और जानबूझ करके हक की मुखालफत करने वाली, तो अल्टीमेटली मरने से पहले पहले इनको किसी न किसी मौके पर हिदायत मिल जाती है। ठीक है चले, अच्छा कहाँ पर थे भाई हम, इसमें कोई नोट वोट नहीं किया हुआ, कहाँ से शुरू करें, पर पेज नंबर 421 से फिर, या तो खुलासे तफसीर शुरू करते हैं कि जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि ऐ मेरी कौम मुझको क्यों ईज़ा पहुंचाते हो, हालांकि तुमको मालूम है कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ। वो ईज़ाएँ मुख्तलिफ तौर पर थीं जिनमें से बाज़ बाज़ कुरान मजीद में खसूस सूरह बकरा में मजकूर हैं, और हासिल इन सब का सरकशी और मुखालफत है। सूरह यानी बनी इसराइल का तज़किरा जो है ना वो सूरह बकरा के शुरू के चंद पेजेस के बाद शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी बनी इसराइल का इतना तذکرہ है कुरान शरीफ के अंदर कि वो बिल्कुल शुरू से ही शुरू हो जाता है और आखिरी पारे तक चलता रहता है। ठीक है, ये ऐसे स्पेशल किस्म के लोग थे, और गोया के یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ ایک خصوصی تعلق تھا، اور اس جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نا مان کر کے دی اور بہت برے کام کیے نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یعنی ان کا تذکرہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے قرآن کے اندر رکھا۔ بہرحال تو جب اس فہمائش پر بھی وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے اور راہ پر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور زیادہ ٹیڑھا کر دیا، یعنی مادہ مخالفت اور عصیان کا اور زیادہ بڑھ گیا، جیسا کہ قاعدہ ہے کہ گناہ پر مداومت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف قلب کا میلان اور اس کی اطاعت کا جذبہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی مداومت کہتے ہیں اصرار کرنے کو، خصوصاً جب آپ کو پتا ہو کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ گناہ ہے، پھر بھی آپ اس کے اوپر اصرار کریں نا، تو اس سے پھر نا یعنی حق کی ایکسیپٹیبلٹی آپ کے اندر کم ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے وہ یعنی آپ کا مزاج ہی جو ہے نا پھر گناہ کو پسند کرنا شروع ہو جاتا ہے اور نیکی کو ناپسند کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ پر مداومت کی ایک سزا ہوتی ہے جو کہ انسان کو دنیا کی زندگی میں ہی ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معمول ہے کہ وہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا، اسی طرح یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انواع مخالفت سے ایذائے پہنچاتے ہیں، اس لیے ان کا ٹیڑھا پن اور فسق زیادہ ہوتا جاتا ہے کہ امید اصلاح کی نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو تو پتا تھا نا، ایک ایک نشانی پتا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن انہوں نے ایذائے پھر بھی پہنچائی تو ان کا ٹیڑھا پن اور بڑھتا چلا گیا۔ بس ان کا فساد مٹانے کے لیے قتال کا حکم دینا مصلحت ہوا، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل تذکرہ ہے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں، اور اس بشارت کے عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہونا خود اہل کتاب کے بیان سے حدیثوں میں ثابت ہے۔ اس کے اوپر ہمارے مشائخ نے، بلکہ ہمارے حضرت ہی سے ساجد نے سنا، بڑی اچھی ایک تمثیل بیان کری کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا پنڈال میں کوئی جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، بہت بڑا جلسہ، اور اس کے اندر نا بڑے بڑے شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے، بہت بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں، مشائخ آ رہے ہیں، انہوں سب نے جلسے سے خطاب کرنا ہے، تو کیا اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس جلسے کا ایک اناؤنسمنٹ کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا ایڈمن ہو کہ اناؤنسمنٹ کرنے والا ہو، تو پہلے جو ہے نا وہ جتنے چھوٹے 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 علماء ہوتے ہیں سب سے پہلے سب سے چھوٹے سے بیان شروع کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد ان سے بڑے سے، پھر ان کے بعد ان سے، اس طرح سے ایک عام ترتیب چلتی ہے جلسوں کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن آخر میں بلکہ سیکنڈ لاسٹ جو شخص آتا ہے نا، وہ آ کر کے اناؤنس کرتا ہے کہ جی اب، یعنی جو سیکنڈ لاسٹ بیان کرنے والا ہوتا ہے وہ اناؤنس کرتا ہے کہ اب ہمارے بعد جو ہے نا وہ مہمان خصوصی تشریف لانے والے ہیں، ٹھیک ہے، اب مہمان خصوصی تشریف لائیں گے، اس کے بعد وہ جو اناؤنس کرنے والا ہوتا ہے وہ جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر مہمان خصوصی آتے ہیں، وہ اپنا پورا بیان کرتے ہیں جو کہ اصل اس جلسے کی رونق ہوتی ہے، وہ جب اپنا بیان ختم کر لیتے ہیں نا، تو پھر اس کے بعد جو اناؤنسمنٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک بار پھر اسٹیج پر آتا ہے، اور وہ اسٹیج پر آ کر کے پھر آفیشلی جلسے کا اختتام کرتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی گویا ایسی ہی مثال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، نبی علیہ السلام کی اناؤنسمنٹ کرنا یہ ان کا سب سے میجر کام تھا، اس کے بعد وہ بیٹھ گئے جا کر کے، یعنی دوسرے آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، اور جب نبی علیہ السلام کی امت والا سلسلہ جو ہے وہ ایک منطقی لیول تک پہنچے گا نا، تو اس کے بعد اس جلسے کا اختتام کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو واپس بھیجا جائے گا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ آ کر کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ الٹیمیٹ ڈیکلائن جو ہے وہ دنیا کا شروع ہو جائے گا، جس کے بعد پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ بہرحال تو یہ تو ایک تمثیل تھی عیسیٰ علیہ السلام کی اور نبی علیہ السلام کے آنے کے متعلق۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ خود اہل کتاب کے بیان میں بھی یہ حدیثوں سے ثابت ہے، چنانچہ خازن میں بروایا ابو داؤد نجاشی بادشاہ حبشہ کا، جو کہ نصارہ کے عالم بھی تھے، یہ قول آیا ہے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ تو نجاشی تو بہت بڑے عالم تھے، اور پھر بعد وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، تو انہوں نے بھی تسلیم کیا. اور خازن ہی میں ترمیزی سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو کہ علماء یہود میں سے تھے آیا ہے کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھی ہے اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہوں گے, یعنی یہ بات بھی تورات میں لکھی ہوئی ہے. تو جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے جس کے اندر جو کہ اب مواجہ شریف کے سامنے جو جگہ ہے جس کو روضہ مبارک کہا جاتا ہے, تو وہاں پر تین قبریں. تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا ویسے تو کہ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے بعد ابھی بھی ایک سپیس اس حجرے کے اندر باقی ہے, یعنی اس حجرے کو نہ ایکسپینڈ کیا گیا نہ اس حجرے کو کم کیا گیا کہ بھائی یہ جو قبریں ہیں بس باقی ان قبروں کی چاروں طرف دیوار بنا دی جائے. نہیں, جو اس حجرے کی اوریجنل سائز تھا نا وہ سائز ابھی بھی مینٹینڈ ہے اور وہاں پر ابھی بھی ایک قبر کی جگہ باقی ہے کہ جس کے بعد پھر اس حجرے کی دیوار شروع ہوتی ہے. وہ قبر کی جگہ کس کی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا اور آخر میں جب ان کا انتقال ہو جائے گا, وہ ان کے بارے میں روایت سے پتہ لگتا ہے کہ وہ تقریباً 50 سال کے قریب یا 45 45-50 ایئرز جو ہیں وہ دنیا میں رہیں گے واپس تشریف لانے کے بعد, اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا. تو ان کو جو ہے نا وہ اس حجرے میں دفن کیا جائے گا. تو غالباً یہ جو اب اس وقت جو جتنی جو انفورسمنٹس اور یہ جو بلڈنگ اور یہ سب کچھ موجود ہے کہ جس کی وجہ سے جو اصل حجرہ ہے وہ ایکسیسیبل ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, اس تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے, وہ انڈر گراؤنڈ ہے. یعنی جس لیول کے اوپر ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں جب مسجد نبی اور ریاض الجنہ وغیرہ جاتے ہیں, مواجہ شریف پہ جاتے ہیں, تو اصل جو قبریں ہیں وہ تو اس کے نیچے لیول پر ہے نا, اس لیول پر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو لگتا ہے کہ وہ پھر سے ایکسیسیبل بنا دیا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ظاہر ہے یہ اتھارٹی بھی ہوگی کہ وہ یہ ساری تبدیلیاں کر سکیں. ٹھیک ہے, بہرحال تو یہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہوں گے. اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام تورات کے مبلغ تھے اس لیے تورات میں اس بشارت کا ہونا نیز عیسیٰ علیہ السلام سے منقول کہا جائے گا. یعنی اس بشارت کا ہونا بھی عیسیٰ علیہ السلام سے ہی منقول کہا جائے گا کہ انہوں نے ہی یہ بشارت دی. اور مولانا رحمت اللہ صاحب نے اظہار الحق میں خود تورات کے موجودہ نسخوں سے متعدد بشارتیں نقل کی ہیں. جلدوم صفحہ 174 164 مطبوعہ قسطنطنیہ, اور ان مضامین کا اناجیل موجودہ میں نہ ہونا, یعنی تورات سے انہوں نے یہ ساری جو بشارتیں ہیں نا وہ اپنی کتاب اظہار الحق کے اندر نقل کی ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ تورات کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے اناجیل, انجیل جس کو کہتے ہیں ہم, تو اناجیل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, تو ان کے اندر جو موجود نہیں نظر آتی ہیں نا تو وہ اس لیے مضر نہیں ہے, یعنی اس لیے وہ بات جو ہے وہ ایسی نقصان پہنچانے والی بات نہیں ہے کہ بھئی کیوں نہیں وہاں پہ موجود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حسب تحقیق علماء محققین اناجیل کے نسخے محفوظ نہیں رہے, اناجیل کے نسخے جو ہیں وہ تو پہلے وہ یعنی ختم ہو چکے ہیں, مگر تاہم جو کچھ موجود ہیں ان میں بھی اس قسم کا مضمون موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے کیا بھیج دیا, انجیل بھیج دیا تاکہ لوگ پہلی قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں اور قرآن چھوڑ کر کے اور انجیل کا, شیطان جو ہے نا وہ بہت آسانی کے ساتھ مسلمانوں کو قرآن سے ہٹا کر کے انجیل کے مطالعے کے اوپر لگاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, بہرحال پوچھ لیا کریں کلاس کے اندر ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے پوسٹ کرتے ہیں. مگر تاہم جو کچھ موجود ہیں, کون سی کتاب کا لنک ہے؟ یہ اظہار الحق کا لنک ہے. اچھا, اظہار الحق کا اگر لنک ہے تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی اور کتاب کا آپ پوسٹ کر رہے ہیں تو وہ نہیں پوسٹ کرنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے, ان میں بھی اس قسم کا مضمون موجود ہے. چنانچہ یوحنا کی انجیل مترجمہ عربی مطبوعہ لندن 1831 سے 1833 کے 14 باب میں ہے کہ تمہارے لیے میرا جانا ہی بہتر ہے, کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو فارقلی تمہارے پاس نہ آوے, بس اگر میں جاؤں تو اس کو تمہارے پاس بھیج دوں گا. فارقلیت ترجمہ احمد کا ہے. اہل کتاب کی عادت ہے کہ وہ ناموں کا بھی ترجمہ کر دیتے ہیں, تو ان کے جیسے کہ جو ان کے جتنی بھی بکس اب موجود ہیں دنیا کے اندر, تو انہوں نے نا ہر چیز کا ترجمہ کیا ہے. جیسے کہ दाऊद का तर्जुमा उन्होंने डेविड कर दिया है। अब दाऊद जो है वो मौजूद नहीं है उनकी किताबों के अंदर, और इसी तरह से यूसुफ का तर्जुमा जोसेफ कर दिया है, अब वो जोसेफ ही मौजूद है, बस यूसुफ नाम का जो असल लफ्ज जो उनका था यूसुफ, तो वो तो अब मौजूद ही नहीं है। तो वो यानी नामों का भी तर्जुमा कर देते हैं या कोई और ही नाम कॉइन कर लेते हैं। तो इस तरह से उन्होंने पारकलीत का तर्जुमा भी किया। तो ईसा अलैहि सलाम ने इब्रानी में अहमद फरमाया था, क्योंकि ईसा अलैहि सलाम की जो ज़ुबान थी वो इब्रानी थी, हिब्रियू जिसको कहते हैं। जब यूनानी में तर्जुमा हुआ तो बेरकुलुतूस रख दिया, रोमन लैंग्वेज जिसको कहते हैं ग्रेको रोमन, यूनानी को ग्रेको रोमन यानी ग्रीस प्लस रोम, ये दोनों अलग अलग मुल्क हैं, ग्रीस अलग है रोम अलग है, तो वहाँ पर जो लैंग्वेज चलती थी उसको यूनानी हम कह देते हैं, जिसके मानी है अहमद यानी बहुत सराहा गया, बहुत हम्द करने वाला। फिर जब यूनानी से इब्रानी में तर्जुमा किया तो उसको फारकलीत कर दिया, और बाज़ इब्रानी नुस्खों में अब तक नाम मुबारक अहमद मौजूद है। देखो पादरी पारकोहरस्त की ये इबारत दबाद हमदा खल बिकोटीम अज़ हिमायत इस्लाम मतबुआ बरेली 1873 सफ़ा 8481 तर्जुमा अपोलोजी गाओफ्री एंगेस मतबुआ लंदन 1829। क्योंकि जब ज़ाहिर है अंग्रेज़ बरसग़ीर में आए थे तो अंग्रेज़ों ने अपनी ताकत को अपनी हुकूमत को भरपूर इस्तेमाल किया बरसग़ीर पाक व हिंद के अंदर क्रिश्चियनिटी को फ़रोग देने के लिए। उससे पहले तो क्रिश्चियनिटी यहाँ मौजूद ही नहीं थी, लेकिन उनके एक एफर्ट से इतना हुआ कि अब जितने क्रिश्चियन नज़र आते हैं ना वो यानी पहले तो वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो उन्होंने यही किया कि अपने जो जो यानी उनकी किताबें थीं तो उनको ला ला करके यहाँ पर लोकली प्रिंट करवाना शुरू किया, यहाँ की ज़ुबानों में उनको ट्रांसलेट करवाया, तो इसी वजह से ये लोकल प्रिंटिंग्स जो हैं वो मौजूद थी। जब हम काफ़ी छोटे थे, मुझे याद नहीं पड़ता, मैं शायद 10 साल या हो सकता है 8-9 साल का होगा, तो मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फेरी शिप आकर के लंगर अंदाज हुआ कराची पोर्ट के ऊपर। उसका नाम था एलिजाबेथ टू, क्वीन एलिजाबेथ टू। क्वीन एलिजाबेथ वन जो है वो तो शायद टूट फूट करके ख़त्म हो गया था, लेकिन ये क्वीन एलिजाबेथ टू था, और ये उस ज़माने में एटलीस्ट दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म वाला जो क्या कहते हैं उसको ट्रेलर या खास एक लफ्ज़ होता है वो था, शिप था। तो बड़े बड़े लोग देखने के लिए जा रहे हैं, उस ज़माने में इतनी सिक्योरिटी वगैरह के मसले थे नहीं, ये सब दहशतगर्दी वगैरह शुरू नहीं हुई थी, तो पोर्ट जो है वो खुल जाता था लोगों के लिए, और लोग जा करके जहाज़ों के ऊपर चढ़ते भी थे और नेवी के भी जहाज़ आते थे और वगैरह। तो हम भी गए भी वहाँ पर अपने वाले साहब के साथ, तो वहाँ पर जा करके जब जहाज़ के ऊपर चढ़े तो बड़ी यानी बड़ी चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी, और किताबें भी और मुख्तलिफ किस्म के टॉयज़ भी और डेकोरेशन के सामान भी, छोटी छोटी होती है ना आपके मेंटल पीस टेबल के ऊपर रखने वाली चीज़ें। तो हम बड़ी खुशी से वो है चंद चीज़ें भी उठा करके ले आए और कुछ किताबें भी उठा करके ले आए। तो जब उनको पढ़ा तो पता चला कि वो जो किताबें थी ना वो थी ईसाइत की तबलीग वाली किताबें, सही है, उसके अंदर जो है वो स्टोरीज थी अपने क्या कहते हैं तौरात की और इंजील की स्टोरीज थी, बाइबल की स्टोरीज थी उसके अंदर, और ज़ाहिर उन्होंने दीन ईसाइत ही को हक बना करके पेश किया हुआ था, और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पिक्चर्स के साथ और रंग बिरंगी किताबें वगैरह। तो अब ज़ाहिर पाकिस्तान वालों को तो पता ही नहीं था, या पता नहीं, पता भी था तो भी दे रेंट किया हुआ, तो फिर किस किस ने उनको पढ़ा और किस किस के ईमान के साथ क्या क्या हुआ, अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमा दी, वरना हम भी कोई ऐसे तो नहीं थे। बहरहाल तो इस तरीके से इन्होंने दुनिया के अंदर ईसाइत को फैलाया है। अच्छा, तो उसके अल्फाज ये हैं, इस फारकलीत की नस्बत इस इंजील यूहन्ना में ये अल्फाज हैं, वो तुम्हें सब चीज़ें सिखा देगा। फारकलीत के बारे में ये अल्फाज हैं, और ये कि इस जहान का सरदार आता है, वो आकर दुनिया को गुनाह पर और रास्ती और अदालत के खिलाफ पर सजाएं देगा। ये वो अल्फाज हैं जो नबी मुस्तकिल होने पर दाल हैं, यानी ये ऐसी काम जो है ना वो सिर्फ एक नबी ही कर सकता है, जो कि दुनिया को गुनाह पर और रास्ती और अदालत के खिलाफ पर सजा देगा। तो ये तो अथॉरिटी सिर्फ एक नबी के पास होती है। और पूरी बहस इस मुकाम की तफसीर हक्कानी में है, उसका एक शम्मा नकल किया गया है। गर्ज़ ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फिर जब ये तमाम मज़ामीन इरशाद फरमा कर अपनी नबूवत के इस्बात के लिए वो ईसा अलैहिस्सलाम इन लोगों के पास खुली दलीलें लाए, तो वो लोग इन दलाइल यानी मोजज़ात की निस्बत कहने लगे कि ये तो सरीह जादू है। ठीक है, तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी बनी इसराइल ने इसी तरीके से ट्रीट किया जिस तरह से नबी अलैहिस्सलाम को मुशरिकीन मक्का ने किया था, सरीह जादूगर कह करके, और जादू बताकर नबूवत की तकजीब की। कमा फिल माईदा व इज कफफ्तु बनी इसराइल अनका इज जिअतहुम बिल बय्यिनात, कि जब वो बय्यिनात लेकर के उन लोगों के पास आए तो बनी इसराइल ने उनके जो है ना वो झूठा कहा। इसी तरह बाद ईसा अलैहिस्सलाम के, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर रिसालत में कुफार मौजूदीन ने, यानी उस वक्त जो कुफार मौजूद थे, उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब की और मुखालफत की, और ये जुल्म अजीम है। बस इस जुल्म का तादिया मिटाने के लिए कताल का हुक्म देना मसलहत हुआ। यानी क्योंकि ये जो 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 सूरह सफ है इसके अंदर कताल यानी जो फिजिकल फाइटिंग है उसके की अजमत बयान की गई है ना, तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इन लोगों ने जो इस तरीके से जुल्म को फैलाना, तादिया का मतलब होता है कि कोई अमल जो आप खुद पहले करते थे, अगर आप खुद कोई अमल करते हैं ना, खाली बस अपने अपने आप में कोई अमल कर रहे हैं और उसको आप स्प्रेड नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे अमल को कहेंगे लाजिम। ठीक है, लाजिम ग्रामर के अंदर किसी ने शायद पढ़ा भी हो कि फेल लाजिम वो फेल होता है जो कि फाइल के ऊपर ही खत्म हो जाता है, करने वाला बस अपने अंदर ही वो काम कर रहा है, और फेल मुतअद्दी वो होता है कि जो किसी और के ऊपर किया जाए, ठीक है ना, जिसका एक मफ़ऊल भी मौजूद हो, ऐसे फेल को फेल मुतअद्दी कहते हैं। तो जब आप अपने दीन की तबलीग भी शुरू करना शुरू कर देते हैं ना, दूसरों के ऊपर भी असर करना शुरू कर देते हैं, तो ये होता है तादिया। ठीक है, इसको तादिया कहेंगे। तो जब शिर्क को दूसरों तक फैलाने का काम शुरू हो जाता है तो उसको कहेंगे जुल्म का तादिया, क्योंकि शिर्क शिर्क जो है वो जुल्म अजीम है, सबसे बड़ा जुल्म है, तो उसको मिटाने के लिए फिर कताल का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। तो ये ऐन मसलहत हुआ कि भाई अगर आप अपने आप में खाली इबादत करते रहेंगे और कलमा पढ़ते रहेंगे तो फिर जो जुल्म जुल्म दुनिया के अंदर फैल रहा है तो उसको तो आप नहीं रोक सकेंगे ना, वो तो फैलता चला जाएगा हद तक आप भी उसकी लपेट में आ जाएंगे। तो उसका हल जो है वो अल्लाह ताला ने कताल की शक्ल में दिया है, लेकिन ऑब्वियसली इसकी जो सारी रिस्ट्रिक्शन हैं तो वो उनके साथ ही किया जा सकता है, अदरवाइज ये कताल नहीं होगा, ये फसाद होगा। बहरहाल आगे फरमाया कि वाकई इस शख्स से ज़्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे कि अल्लाह का बेटा है या अल्लाह की बीवी है या अल्लाह की बेटियां हैं या अल्लाह ताला के पार्टनर्स दूसरी शक्लों में मौजूद हैं वगैरह वगैरह, ये सारा का सारा अल्लाह ताला के ऊपर झूठ बांधना है। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वमन अज़लम, और कौन इससे ज़्यादा जालिम हो सकता है। ठीक है, वो हमारे दिलों में कभी कभार जो वो बहुत ही मोहब्बतें फूटना शुरू हो जाती है ना मुशरिकाना अकायद रखने वालों के लिए, तो हमें ज़रा अपने आप को समझाने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला के सामने हम क्या जवाब देंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो मन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबा, और हम कह रहे हैं कि नहीं, बड़े अच्छे सारे धर्म एक हैं, है ना, आजकल यही चल रहा है ना, सबसे ज़्यादा मार्केट में सबसे ज़्यादा इन कौन सा नारा है, सारे धर्म एक हैं, है ना, तो फिर मरने के बाद फिर वो उन्हीं धर्मों के साथ ही अंजाम होगा फिर, राइट। तो उस वक्त से डरना चाहिए। दुनिया के छोटे छोटे फायदे, और वो भी फायदे भी जिनका कुछ पता नहीं है कि फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, बस ऐसी गुमान में जो है ना वो लोगों को खुश करने की कोशिश करना शुरू हो जाते हैं, हालांकि बचने बचने की कोई इसमें गारंटी नहीं है कि वो फिर भी आपको छोड़ेंगे, बस अपना आखरत खराब कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो कौन ज्यादा जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे हालांकि वो इस्लाम की तरफ बुलाया जाता हो, और अल्लाह ऐसे जालिम लोगों को हिदायत की तौफीक नहीं दिया करता। अल्लाह पर झूठ बांधना ये है कि नबूवत की तकजीब की, اثباتل منفی اور نفی المثبت، یعنی منفی چیز جو ہے نا اس کا اثبات کر رہے ہیں، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو منفی چیز ہے، اور جو مثبت چیز ہے اس کی نفی کر رہے ہیں. یہ کہلاتا ہے اثبات المنفی و نفی المثبت. ٹھیک ہے، یعنی جو چیز اللہ کی طرف سے نہیں ہو اس کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے واقعی میں ہو اس کی نفی کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں اللہ کی طرف سے نہیں ہے. دونوں افتراء علی اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی یہ دونوں شکلیں ہیں. اور وہ یدعا اس لیے بڑھایا کہ اس سے زیادہ تقبیح ہو گئی، یعنی اور زیادہ قباحت ہو گئی، یعنی خود تو متنبہ کرنے سے بھی متنبہ نہیں ہو رہا. اور واللہ لا یہدی اس لیے بڑھایا کہ ان کی حالت موجودہ اصلاح سے بعید ہو گئی، اس لیے سدائے قتال ہی تجویز کیا جانا مصلحت ہوا. چنانچہ جس کو اب بھی اسلام کی خبر نہ پہنچی ہو، اول اس کو دعوت اسلام کرنا چاہیے. جب اس سے انکار کرے، جو کہ ظاہراً علامت نا امیدی کی ہے، تب جہاد مشروع ہے. یعنی جب تک آپ تبلیغ کا کام کر نہ لینا، اس وقت تک جہاد جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا. یعنی جو پراپر طریقہ جہاد کرنے کا امیر کی سرکردگی میں، کیونکہ اس کے بغیر تو جہاد ہوتا بھی نہیں ہے، تو امیر کی سرکردگی میں جو جہاد ہے نا وہ بھی اس وقت تک جائز نہیں ہوتا جب تک آپ دعوت و تبلیغ کا کام نہ کر لیں. ٹھیک ہے، اور ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کہاں سے جہاد کر سکتے ہیں بھائی؟ ہم تو بس زیادہ زیادہ ڈیفنسو ہی ہوتا ہے کہ بھائی وہ اپنے ملکوں سے آ جاتے ہیں اور چڑھ دوڑتے ہیں، اب اپنی جان بچانے کے لیے کیا کریں، بس اور تو کچھ کر نہیں سکتے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا اپنی جان بچانے کے لیے خالی، رائٹ؟ اپنا گھر بچانے کے لیے، اپنی بیوی بچوں کو بچانے کے لیے تو آپ کو کرنا پڑے گا. ہمارا تو وہ جہاد ہے، یعنی اس دور کا تو یہ جہاد ہے. ٹھیک ہے، دعوت و تبلیغ کرنا، اور پھر اس کے بعد جب وہ نہیں مانیں گے تو پھر جو ہے وہ اعلان جنگ کرنا، اس کی تو کسی کے پاس ہمت ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس یہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کیا لکھ رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو جنرلائز کر سکتے ہیں جیسے کہ فیشن انڈسٹری؟ پہلے مسلمانوں کا اپنا لباس تھا، پھر سب انہوں نے چینج کر دیا. ممن افترا علی اللہ الکذبہ، کو فیشن انڈسٹری کے اوپر جنرلائز کر سکتے ہیں؟ اس کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور چیز کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں پتہ نہیں، اس کو ذرا آپ کلیئر کر لیں تو پھر دیکھتے ہیں. اچھا، آگے ترغیب جہاد کے لیے وعدہ نصرت و غلبہ حق اور مغلوبیت باطل ارشاد ہے کہ یہ لوگ یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، یعنی تدبیر عملی کے ساتھ منہ سے بھی رد و اعتراض کی باتیں اس غرض سے کرتے ہیں کہ دین حق کو فروغ نہ ہو. یعنی ایک تو عملی تدبیر بھی کرتے ہیں اور زبان سے بھی جو ہے وہ ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ دین حق کو جو ہے وہ فروغ نہ حاصل ہو. اور بعض اوقات قولی شبہات مؤثر ہو جاتے ہیں، یعنی زبان سے جو شبہ پھیلائے جاتے ہیں نا کبھی وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عملی تدبیروں سے بھی زیادہ زبانی باتیں جو ہیں نا وہ اگلے بندے پر اثر کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے زبانی تبلیغ بھی جو ہے نا وہ بھی بہت اہم ہوتی ہے. یہ نہیں کہ بھائی عملی تبلیغ کرو اور نیک بن کر کے دکھاؤ اور بس، اور کہنے وانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں، کہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے نا وہ کہنا جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈپینڈنگ آن دا سچویشن، آپ کہنا اور کرنا ان دونوں کو ان کی ترتیب ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ پہلے کہنا ہے بعد میں کرنا ہے، یا پہلے کرنا ہے بعد میں کہنا ہے. یہ پھر حالات و واقعات کے حساب سے آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ تبلیغ میں قولی تبلیغ پہلے کرنی ہے پھر عملی تبلیغ کرنی ہے، یا پہلے عملی تبلیغ کرنی ہے پھر قولی تبلیغ کرنی ہے. یہ ساری چیزیں. اچھا، کیا ابھی جو بات چل رہی تھی، صرف اپنے تک رکھنا یا پھر اسے پھیلانا بھی؟ یعنی اپنا جو لباس ہے اس کو اپنے تک رکھنا یا پھیلانا بھی؟ لباس وغیرہ، فیشن انڈسٹری پہلے مسلمانوں کا، ہاں تو وہ جو بات چل رہی تھی نا کہ متعدی کی بات کر رہے ہیں نا، फैशन इंडस्ट्री जो है वो मुतादी होती है। हाँ डेफिनेटली फैशन इंडस्ट्री जो है वो मुतादी होती है, क्योंकि वो खुद खाली एक तरह का लिबास नहीं पहन रहे होते बल्कि उसको प्रोमोट भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो ये भी एक जुल्म ही है, क्योंकि वो जिस किस्म के लिबास को प्रोमोट कर रहे होते हैं उस लिबास के अंदर हया नहीं होती, ठीक है। और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें जो जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो नहीं होती हैं, बुरी चीज़ें उसके अंदर ज़्यादा होती हैं, ज़ेबो नुमाइश ज़्यादा होती है उसके अंदर, बेहयाई ज़्यादा होती है उसके अंदर, और कुफार का मुशाबियत ज़्यादा होती है उसके अंदर। तो वो डेफिनेटली वो मुतअद्दी जुल्म के अंदर ही वो भी शामिल हो जाएगा। अच्छा, और क्या कह रहे हैं कि हालांकि अल्लाह ने अपने नूर को कमाल तक पहुंचा कर रहेगा, वो काफिर कैसे ही नाखुश हों। चुनाचे वो अल्लाह ऐसा है जिसने इस इत्माम नूर के लिए अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत का सामान यानी कुरान और सच्चा दीन यानी इस्लाम देकर दुनिया में भेजा है, ताकि इस दीन को वो नूर मस्कूर के वो नूर मस्कूर है। यानी यहाँ पर हजरत ने क्या लिखा कि यहाँ पर नूर से मुराद जो है ना ये दीन इस्लाम है, ठीक है। वैसे नूर की और भी तफासीर आई हैं कि ये कुरान है, किसी तफसीर के मुताबिक ये दीन इस्लाम है, किसी तफसीर के मुताबिक ये नबी अलैहिस्सलाम है, ठीक है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के लिए जो नूर का लफ्ज़ जिन्होंने कहा ना, जिन मुफस्सरीन ने कहा, तो उनकी भी मुराद जो है वो उस तरह का नूर नहीं था जिस तरीके से यानी सूरज और चांद का नूर होता है, वैसा नूर अब नबी अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम है बशर, जिसकी यानी बशर होने के साथ साथ आप सल्लम जो है वो नूर का काम भी दे रहे होते हैं, ठीक है। तो बशरियत की नफी नहीं की, जिसने भी कहा ना कि नबी अलैहिस्सलाम नूर हैं, उन्होंने आप सल्लम की बशरियत की नफी करके ही नहीं कहा। ये तो आजकल के जो है वो शौकीन मिजाज लोग होते हैं, तो उन्होंने आप सल्लम को जो है वो महज नूर की तरीके से प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो ताकि इस दीन को तमाम बकिया दीनों पर गालिब कर दें कि यही इतमाम है, गो मुशरिक कैसे ही नाखुश हों। वक़द मर्रा तफसीर इतमाम व ज़ुहूर फी सूरत अल-बराअ। कोई सवाल है इन टॉपिक्स के बारे में? ये जो ईसाइयों की गॉस्पल्स हैं, इन गॉस्पल्स में से एक कहलाती है गॉस्पल ऑफ बार्नबस। इसके बारे में सुना है कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो कि इस्लाम के की हकानियत को जाहिर करती हैं। तो बस नाम की हद तक मालूम होना चाहिए, बाकी कुछ और भी चीज़ें डिस्कवर हुई हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो चीज़ें भी जो हैं वो पूरे दीन इस्लाम के बारे में वगैरह। अच्छा, आगे की आयात भी हम पढ़ लेते हैं, तिलावत तो कर ली थी, उनका तर्जुमा कर लेते हैं और फिर अगली क्लास में इसकी तफसीर पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, क्या मैं तुम्हें बता दूं ऐसी तिजारत, यानी ऐसी तिजारत की तरफ मैं तुम्हें पॉइंट कर दूं। दल्ला या दुल्लू का मतलब होता है पॉइंट करना, निशानदही करना, ठीक है, दलालत करना। तो क्या मैं दलालत ना कर दूं एक ऐसी तिजारत की तरफ तुम्हारी, तुंजी कुम मिन अजाबिन अलीम, जो तुम्हें निजात दे दे एक दर्दनाक अजाब से, ठीक है। ये कह करके अल्लाह ताला फरमाते हैं तुमिनून बिल्लाही, ईमान लेकर के आ जाओ तुम अल्लाह के ऊपर, व रसूल ही और उसके रसूल के ऊपर, व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और तुम जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में, बे अमवालिकुम व अनफुसिकुम, अपने अमवाल के साथ और अपनी जानों के साथ, यानी माली तौर पर भी जिहाद करो और जानी तौर पर भी जिहाद करो। ये है वो तिजारत, ठीक है, जिसके बारे में पीछे फरमाया कि जो तुम्हें एक अजाब अलीम से निजात दे दे। ज़ालिकुम खैरुल्लकुम, ये ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम समझ रखते हो, इल्म रखते हो, इल्म रखने का मुराद कि अगर तुम समझ रखते हो, ठीक है, यानी इस इल्म को तुम समझते भी, खाली सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स वगैरह तुमने नहीं पढ़ ली है, बल्कि इसकी समझ भी रखते हो, तो ये बात ना तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और मजीद क्या फायदे होंगे, यानी एक तो अज़ाब अलीम से तुम्हें निजात मिल जाएगी, और मजीद उसको उसको मजीद खोल रहे हैं उसी बात को, मजीद खोल रहे हैं। यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, ये यानी बख्श देगा वो तुम्हें तुम्हारे गुना, यानी जो गुना तुमने किए होंगे ना ईमान लाने के बावजूद और जिहाद करने के बावजूद। एक इंसान खताओं का पुतला होता है, ठीक है, उससे हर हर लम्हे कोई ना कोई खता हो जाती है, ठीक है। अल्लाह ताला की शान के मुताबिक उसके आमाल नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम जो भी आमाल करते हैं ना, अगर उनको अल्लाह की शान से कंपेयर किया जाए तो वो खताएं ही होती हैं, वो गुनाह ही होते हैं, ठीक है। एक तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि भाई जो ईमान ले आए हैं, जो जिहाद भी कर रहे हैं, तो अब गुनाह कहाँ से, ठीक है, अब गुनाह कहाँ से उनके पास उनके पास होए कि जिनको के माफ कर दिया जाएगा, कौन से गुनाह की बात हो रही है, ठीक है ना। हालांकि वो तो कामिल ईमान वाले थे, क्योंकि कुरान के अंदर जब ईमान वालों का तذکرہ होता है तो वो तो ईमान कामिल वाले लोग होते हैं ना, साहब कराम वगैरह होते हैं, ठीक है। तो फिर उनके गुनाह कहाँ से आ गए, तो उसकी एक्सप्लेनेशन एक तो ये हो सकती है कि भाई जितने भी इंसान अमल कर लेना, चाहे सहाबा करें चाहे कोई भी करे, अल्लाह की शान के तो वो बिल्कुल बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो वो अल्लाह के मुकाबले में तो वो गुनाह ही होते हैं ना, अल्लाह की शान के मुकाबले में। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि अल्लाह ताला ने तो हमें जो कुछ हमारे पास है सब कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ है, ठीक है, और अल्लाह ताला की तो अजमत इतनी ज्यादा है कि अल्लाह ताला यानी हमारा तो ये हाल होना चाहिए कि हम अपना हर काम अल्लाह ताला से पूछ करके करें, पहले हम अप्रूवल लें फिर उसके बाद काम करें, क्योंकि अल्लाह ताला इतने बड़े हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप किसी घर में रहते हैं, तो उस घर के अंदर ना अगर कोई बहुत बड़ी फिगर भी आपके साथ रहती है, कोई बड़ी शख्सियत आपके घर में रहती है जो कि उस घर के बड़े माने जाते हैं, और एवरीवन कंसिडर्स हिम कि भाई यही घर के बड़े हैं और यही जो है वो हम सब के बुजुर्ग हैं, ठीक है। तो अब उस घर के अंदर ना ट्रेडिशनली स्पीकिंग, एटलीस्ट अब तो हम इन चीज़ों से वाकिफ भी नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनली स्पीकिंग पुराने जमाने में ऐसा होता था कि जो भी मेजर फैसले किए जाते थे, अहम काम किए जाते थे, वो उन बड़े साहब से पहले अप्रूव करवा के किए जाते थे, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, क्योंकि उनकी इज्जत इतनी ज्यादा है, उनका मुकाम इतना ज्यादा है, ठीक है। तो अब अगर हम इस तरीके से अपने आप को देखें और अल्लाह ताला को देखें, तो हम अपनी जिंदगी में कितने अहम काम करते हैं, ठीक है, तो क्या हम हर अहम काम के लिए अल्लाह ताला से अप्रूवल लेते हैं, अल्लाह ताला की तरफ देखते हैं, अल्लाह ताला से पूछते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना, हम कर भी नहीं सकते ये, ठीक है, हम नहीं करते हैं इस तरीके से। ये जो हम नेकी के काम कर रहे होते हैं ना, और जो हम गुनाहों से बच रहे होते हैं, ये तो समझ लें कि बहुत ही मोटी मोटी चीजें होती हैं, ठीक है ना, बहुत ही मोटी मोटी चीजें होती हैं जिनको के रसूलों ने बता दिया है कि भाई तुम ये कर लिया करो, ये कर लिया करो, ये कर लिया करो, और ये ना क्या करो, ये ना क्या करो, ये ना क्या करो। ये तो चंद चीजें हैं, गिनती की चीजें हैं, ठीक है। तो हम जो ईमान वाले बन जाते हैं और नेकी तकवा वाली जिंदगी गुजारते हैं ना, तो हम जो है वो चंद नेक आमाल कर रहे होते हैं और चंद मोटी मोटी चीजों में बच रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अल्लाह का हक हमारे ऊपर कितना है, अल्लाह का हक तो ये है कि हम कोई कदम अल्लाह की मर्जी के बगैर ना उठाएं, अल्लाह से पहले पूछें फिर कदम उठाएं, राइट। हम कोई लुकमा अपने पेट में ना डालें जब तक अल्लाह ताला की मर्जी दरियाफ्त ना कर लें, हम कोई सांस अपने फेफड़ों के अंदर ना डालें और कोई सांस फेफड़ों से बाहर ना निकालें जब तक कि हम अल्लाह ताला की मर्जी दरियाफ्त ना कर लें, क्योंकि हम और अल्लाह ताला जो है ना वो इतने डिफरेंस है हमारे और अल्लाह ताला के दरमियान कि जिसके तहत ये बात बिल्कुल सही लगती है कि इस तरीके से हम अल्लाह ताला से अपना मामला करना चाहिए कि हमारा एक एक सांस, एक एक कदम जो है अल्लाह ताला की मर्जी होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। ठीक है, तो इस वजह से ना हकीकत तो ये है कि हमारी तो पूरी की पूरी जिंदगी, हमारा तो एक एक कदम जो होता है ना वो गुनाह कहलाने के काबिल है। ठीक है, तो इस वजह से ना जो जो ईमान वाले भी होते हैं ना, और बहुत ज्यादा तकवा वाले भी जो जो लोग होते हैं ना, उनके भी यानी गुनाह लगे रहते हैं, उनके साथ भी गुनाह होते हैं। ठीक है, जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना कि कुल्लू बनी आदम खताउन, हर बनी आदम खता करने वाला है। अब हर के अंदर तो सारे के सारे आ गए ना, लेकिन जो बेहतरीन खता करने वाले हैं वो हैं जो कि अल्लाह ताला से माफी मांगते रहते हैं। तो इस वजह से यगफिर लकुम दुनूबकुम, अल्लाह ताला फिर सरफे नजर करते हैं। जब हम मोटी मोटे काम कर लेते हैं ना जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिए हैं, यानी ईमान लेकर के आ गए, नबी अलैहिस्सलाम की तस्दीक कर दी, ठीक है, और हमने जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की बताए हुए चंद हुक्मों के ऊपर अमल कर लिया, तो ये जो हम मोटी मोटे काम कर लेते हैं ना, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत की वजह से उन सारे छोटे छोटे खताओं को सरफे नजर कर देते हैं, उनसे उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको जाने देते हैं, चलो छोड़ दो, जाने दो जाने दो, ठीक है ना, ये तो बस क्या कर लेंगे ये लोग ज्यादा ज्यादा। तो यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, वो बख्श देगा तुम्हारे गुना, वो युदखिलकुम, और खाली बख्शेगा नहीं बल्कि तुम्हारे इन मोटे मोटे चंद कामों की बुनियाद पर तुम्हें ऐसे बाहों के अंदर भी दाखिल कर देगा, तजरी मिन तहतिहल अनहारो, कि जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी, वह मसाकिन तय्यिबतन फी जन्नत अदन, और मसाकिन यानी ऐसे तुम्हें मस्कन अता करेगा जो कि बहुत ही पाकीज़ा होंगे जन्नत अदन के अंदर। ठीक है, बसने वाले बागों के अंदर, अदन जो है वो हमेशा बसने वाले की मानी में। अच्छा ठीक है, बसने वाले आ रहे हैं, तो फी जन्नत अदन, वो ऐसे मसाकिन तुम्हें जन्नत अदन में देगा, ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अल फौज़ जो है वो कामयाबी को कहते हैं, अल अज़ीम यानी बड़ी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लास आज रखते हैं, टाइम भी मुकम्मल हो गया है और आपने सुन ही लिया होगा, तो बुलाया जा रहा है, तो बाकी इंशाल्लाह तर्जुमा और तशरीह अगली क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। अस्सलामु अलैकुम।